नमस्कार भारत, 19 मार्च मंगलवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। प्रमोद सावंत बने गोवा के नए मुख्यमंत्री, रात 2:15 बजे राजभवन में ली शपथ।
हाँ, डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की कायद्या करवी स्थापित झाल्या अशा भारतीय संविधाना विषयी।
छत्तीसगढ़ में बारूदी सुरंग विस्फोट में 1 CRPF जवान की मौत, 5 घायल।
कमलपुर से CRPF के एक ट्रूप एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए निकले थे, उनके साथ नक्सली का मुठभेड़ हुआ है।
जानेंगे एनकाउंटर में तबाह हो चुके कश्मीरियों के घर क्या कुछ कहते हैं।
और जहाँ से फायर हुआ पता नहीं कहाँ से फायर हुआ, कहाँ हम डाल गए, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, पता नहीं ये कहाँ से आए, उन्होंने छलांग लगा दी इधर दीवार पर।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधु वासिनी से सुनिए। गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के देहांत के बाद अब सावंत उनकी विरासत संभालेंगे। उन्होंने मंगलवार देर रात 2:15 बजे के लगभग मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले सावंत ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है और इस बड़ी जिम्मेदारी को वो पूरी मेहनत से निभाएंगे। नीदरलैंड्स के यूट्रेट शहर में ट्राम में हुई फायरिंग के सिलसिले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। यूट्रेट में सोमवार सुबह 11:15 बजे के करीब हुई इस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 5 लोग घायल हुए थे। देश की आतंकवाद निरोधी पुलिस का कहना है कि ये आतंकवादी हमले जैसी घटना लग रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि अभी हमलावर के इरादों का ठीक ठीक पता नहीं चल पाया है। क्षेत्रीय पुलिस ऑपरेशन के प्रमुख रॉब वैन ब्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तार किया गया शख्स हमलावर नहीं बल्कि कोई और है।
We hebben onder andere diverse zoekingen in woningen gedaan. Bij een van die zoekingen is een andere verdachte aangehouden. Dat is niet.
हमने कई फ्लैट्स पर छापे मारे और इस दौरान एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, लेकिन ये संदिग्ध हमलावर नहीं है। अभी हमें नहीं मालूम कि इस शख्स की सोमवार को हुई फायरिंग में क्या भूमिका है। हमें अब भी हमलावर की तलाश है। नीदरलैंड्स में क्षेत्रीय पुलिस ऑपरेशन प्रमुख के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के एक सहायता कर्मी ने बीबीसी को बताया है कि मोजाम्बिक के बायरा शहर में साइक्लोन इडाई की वजह से भारी तबाही हुई है। बायरा की आबादी तकरीबन 5 लाख है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जेरल्ड बर्क ने बताया कि तूफान की वजह से शहर के सड़कों पर बिजली के तार बिखर गए हैं और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिपे न्यूसे ने 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई है। देश की कल्याण मंत्री सेकेसेई एनजेजा ने बीबीसी से कहा कि अभी ये बता पाना मुश्किल है कि साइक्लोन के असर से असल में कितना नुकसान हुआ है।
The situation on the ground is difficult to actually measure the extent.
साइक्लोन इडाई की वजह से जमीनी हालत का अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़कें पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई हैं। हमारे यहाँ के 5 पुल तूफान में पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, इसलिए किसी भी जगह पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये थे मोजाम्बिक की कल्याण मंत्री सेकेसेई एनजेजा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पेरिस में हो रहे हालिया येलो वेस्ट प्रदर्शन गुंडों ने किए हैं। उन्होंने कहा कि वैध विरोध प्रदर्शन और शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शनों में अंतर है। मैक्रों ने कहा कि वैध प्रदर्शनों को संविधान द्वारा सुरक्षित रखा गया है, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान शांज़े-लिज़े में रेस्तरां और दुकानों को लूटा गया और उनमें आग लगा दी गई। इस वजह से सरकार ने पेरिस पुलिस के प्रमुख को बर्खास्त भी कर दिया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि अगर हिंसक समूह ऐसे प्रदर्शनों में भाग लेते दिखते हैं तो कई जगहों पर रैलियां प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। चेचन्या में आखिरी बचे मानवाधिकार समूह के प्रमुख को 4 साल के जेल की सजा सुनाई गई है। एक अदालत ने अयूब तितिआओ को यह सजा गैरकानूनी ढंग से गांजा रखने की वजह से सुनाई है। अयूब का आरोप है कि उन्हें इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं।
हाँ, डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की कायद्या करवी स्थापित जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो।
बीती रात को जब लगभग पूरा देश सो रहा था, तब गोवा के राजभवन में प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद खाली हुए मुख्यमंत्री पद को लेकर कई चेहरे सामने आ रहे थे, लेकिन बीती देर रात विधानसभा के स्पीकर रहे प्रमोद सावंत के नाम पर मुहर लग गई। सुनिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा।
पार्टी ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, मेरे ऊपर मुझे जिम्मेदारी संभालनी है। ये जिम्मेदारी संभालने, दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी ने मेरे ऊपर दी है, वो हर तरह से अच्छी तरह से निभाने की मेरी कोशिश रहेगी।
मनोहर पर्रिकर जी की जो लेगेसी आपको मिल रही है उसको किस तरीके से?
मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ पे आज, वो मनोहर पर्रिकर के लिए ही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया और उन्हीं के वास्ते मैं स्पीकर बना, उन्हीं के वास्ते।
नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि वो मनोहर पर्रिकर के लिए ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रमोद सावंत के अलावा महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के विधायक सुधीन धौलिकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये दोनों गोवा के उप मुख्यमंत्री होंगे। आखिर कल पूरी रात क्या सियासी उठापटक रही, यही जानने के लिए मैंने पणजी में स्थानीय पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई से देर रात बात की।
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ था, वो इतवार को हुआ था, और इतवार को होने के बाद दूसरे दिन उनका अंतिम संस्कार था। सो उसके पहले ही उसी रात में दूसरा मुख्यमंत्री लाना है, तो दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर चर्चा शुरू हो गई। इसीलिए कि पहले जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी, ईटी की सरकार थी, तो वहां गठबंधन की सरकार में सब जो बाकी घटक पक्ष थे उन्होंने अपना समर्थन मनोहर पर्रिकर को दिया था, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। और ये बार बार कहा था कि हम मनोहर पर्रिकर को समर्थन दे रहे हैं। तो दूसरी बार सरकार करते समय ये तो सवाल उठता था कि अभी ये पक्ष जो बाकी है, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के तीन, गोवा फॉरवर्ड के तीन और तीन निर्दलीय, ये दूसरी सरकार को समर्थन देगी या नहीं, उसी के ऊपर चर्चा शुरू हो गई। इतवार रात को ही 12:30 बजे नितिन गडकरी दिल्ली से पहुंच गए और तब से सुबह होने तक, सोमवार की सुबह है ना, 5:30 बजे तक ये चर्चा चली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत मांगे हो रही थी। तो दूसरे दिन भी सरकार की ऊपर चर्चा चल रही थी, बाद में मनोहर पर्रिकर की अंतिम संस्कार हो गई शाम को सोमवार को, और फिर से चर्चा शुरू हो गई। तब अमित शाह भी उसमें शामिल हो गए, वो आए थे अंतिम संस्कार के लिए। तो वहां फिर से बहुत मांगे हो गई और अलग अलग बातों पर चर्चा हो गई, और फाइनली ऐसा हो गया कि यही दोनों, मुगो और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी, ये दोनों समर्थन देंगे, निर्दलीय भी समर्थन देंगे। सिर्फ फर्क इतना ही है मनोहर पर्रिकर की पूरी पहली की सरकार और अब इसमें, जो मुगो पार्टी के सुधीन धौलिकर और गोवा फॉरवर्ड के जो नेता है विजय सरदेसाई, उनको अनऑफिशियली है, ऑफिशियली तो उनको मिनिस्टर की शपथ दे दी गई है, लेकिन अनऑफिशियली वो डेप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री कहलाएंगे। और बाकी के सब जो मिनिस्टर हैं वो वही के वही है, जो पहले 11 मिनिस्टर थे वही 11 मिनिस्टर वैसे ही है, सिर्फ उनकी थोड़ी ऊपर नीचे उन्होंने कर दिया है। और सिर्फ मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की जगह में डॉक्टर प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई।
संदेश जी, ये बताएं कि प्रदीप सावंत को लेकर कैसे से सहमति बन गई, क्या कोई और नाम नहीं उभर कर आ रहे थे बीजेपी नेताओं के?
नहीं, ये तो पहले भी इस पर चर्चा हो रही थी कि मनोहर पर्रिकर बीमार थे, और बीमार थे से अगस्त से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को चीफ मिनिस्टर बनाना है तो कौन बनेगा। तो इसमें तीन नाम उभर आए थे, एक तो है जो केंद्रीय मंत्री है और उत्तर गोवा के एक खासदार है, वो है एमपी है वो श्रीपाद नाइक, जो आयुष मिनिस्टर है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जो अभी राज्यसभा के एमपी है विनय तेंदुलकर, उनका नाम आ रहा था, और तीसरा आ रहा था जो विधानसभा के अध्यक्ष है अभी, वो डॉक्टर प्रमोद सावंत, वो तीनों के नाम आ रहे थे। और फाइनली भारतीय जनता पार्टी में चर्चा होकर उन्होंने तय कर दिया था कि उनका नया लीडर जो होगा वो डॉक्टर प्रमोद सावंत होगा।
संदेश जी, ये बताएं कि कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा से कहा था कि सरकार भंग करें बीजेपी की और उनको मौका दें सरकार बनाने का, तो अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन है इस पूरी की पूरी घटना पर?
एक तो कांग्रेस अभी ही नहीं पहले से ही, जब मनोहर पर्रिकर की सरकार बनी वहीं से वो एक बात कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बहुमत होने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उन्हें सरकार बुलाना चाहिए सरकार घटाने के लिए। तो उनको फाइनली मनोहर पर्रिकर की सरकार बन गई थी। अभी जो मनोहर पर्रिकर का निधन होने के बाद फिर से कांग्रेस ने वही उनका डिमांड है वो दोहराया, एक बार गए दो बार गए राज्यपाल के पास, और उन्होंने इतना ही बताया कि यदि आप ये गठबंधन की नई सरकार नहीं बन रही है तो आप असेंबली अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन में मत रखिए, प्रेसिडेंट्स रूल मत लाइए, लेकिन जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस वो हमें बुलाइए क्योंकि हम अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन वो बात तो नहीं आई जब जो गठबंधन के पहले के जो समर्थन दे रहे थे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी और निर्दलीय, वो फिर से वही पे वही रह गए और उन्हीं की सरकार अभी बनी है जो उनके पास ज्यादा बहुमत है।
प्रमोद सावंत बने गोवा के मुख्यमंत्री, अधिक जानकारी दे रहे थे स्थानीय पत्रकार संदेश प्रभुदेसाई। बढ़ते हैं एक दूसरी राजनीतिक खबर की ओर। बीजू जनता दल प्रमुख और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल राज्य की 9 संसदीय और 54 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेडी ने जिन 9 संसदीय सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है उनमें से 8 नए चेहरे हैं। सुनिए भुवनेश्वर से संदीप साहू की रिपोर्ट।
अब मैं आपको 54 विधानसभा क्षेत्रों और 9 लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम पढ़कर सुनाऊंगा। मैं हिंजली और विजयपुर विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ूंगा। सोमवार को उड़ीसा में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजू जनता दल प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए ये थे पार्टी के अध्यक्ष नवीन पटनायक। पिछले 19 सालों में ये पहला मौका है जब नवीन पटनायक 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। पिछले 4 विधानसभाओं में वे दक्षिणी ओडिशा के हिंजली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार हिंजली के साथ साथ विजयपुर से चुनाव लड़ने का उनके फैसले के पीछे कारण ये है कि पश्चिमी ओडिशा में उनकी पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी राज्य के अन्य हिस्सों में है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को पलायन करार दिया है। भाजपा नेता टंकधर त्रिपाठी ने कहा, पश्चिमी ओडिशा के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि हारने के डर के कारण वे वहां जा रहे हैं। जिस हार से बचने के लिए उन्होंने यहां से पलायन किया है वहां भी उन्हें उसी हार का ही सामना करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कल जिन 9 बीजद प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है उनमें 3 महिलाएं हैं। ये नवीन की उस घोषणा के बिल्कुल अनुरूप है जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के 33% लोकसभा क्षेत्रों में उनकी पार्टी इस बार महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए बीजद प्रमुख ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और प्रत्याशियों की पहली सूची को देखते हुए ऐसा लगता भी नहीं है कि 33% महिला प्रत्याशियों का फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में लागू करने का उनका कोई इरादा है, क्योंकि इस सूची में जिन 54 प्रत्याशियों के नाम हैं उनमें से केवल 10 महिलाएं हैं। प्रेक्षकों का मानना है कि नवीन पटनायक ने 9 में से 8 लोकसभा क्षेत्र और 54 में से 27 विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका देकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है और 14 विधायकों का टिकट काटना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। गौरतलब है कि प्रत्याशियों की सूची जारी होने से पहले ही टिकट कटने के बारे में निश्चित सूचना मिलने के बाद बीजद के एक सांसद और 2 विधायक पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में कुछ और नेताओं के पार्टी छोड़ने के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। सभी का मानना है कि इस बार का चुनाव परिणाम काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि नवीन पार्टी के अंदर बगावत को कैसे मुकाबला करते हैं। कल देर रात कांग्रेस ने भी राज्य के 6 लोकसभा क्षेत्रों और 36 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें एक प्रमुख नाम है कलाहंडी लोकसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्र मंत्री भक्त चरण दास। उम्मीद है कि आज भाजपा भी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करेगी। संदीप साहू, BBC भुवनेश्वर।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में CRPF के जवानों पर संदिग्ध माओवादियों द्वारा किए गए हमले में एक जवान की मौत हो गई है, जबकि CRPF के 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि सोमवार की शाम CRPF के जवान सर्च ऑपरेशन पर निकले थे, उसी समय उन पर हमला किया गया। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में सोमवार की शाम CRPF की एक टीम अरनपुर इलाके में नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी, जहां पहले से बिछाए गए बारूदी सुरंग की चपेट में आकर CRPF के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। नक्सल ऑपरेशन के DIG सुंदरराज पी के अनुसार हमले के बाद घायल जवानों को सुरक्षा बलों ने किसी तरह घटनास्थल से निकाला और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टुकड़ी मौके पर रवाना की गई।
अरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमलपोर से CRPF के एक ट्रूप एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए निकले थे, उनके साथ नक्सली का मुठभेड़ हुआ है। CRPF का 6 जवान घायल हुआ, उनमें से एक गंभीर हालत थे, बाद में उसका डेथ भी हो गई थे और बाकी 5 जो घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए अभी रायपुर लिया जा रहा है।
रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए जवानों की हालत स्थिर बनी हुई है, लेकिन इस माओवादी हमले के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। असल में माओवादियों ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब इस इलाके में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के नारों के बीच 11 अप्रैल को ही यहां मतदान होने हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी अरनपुर में माओवादियों के हमले में दूरदर्शन के एक कैमरामैन समेत सुरक्षा बलों के 4 लोग मारे गए थे। जाहिर है ऐसे हालात में इस इलाके में शांतिपूर्ण मतदान चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
अब रुख करते हैं भारत प्रशासित कश्मीर का और बात उन परिवार वालों की जिनके घर सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच होने वाली मुठभेड़ों में नष्ट हो जाते हैं। सालों बाद भी ये लोग अपने घर बना नहीं पाते हैं। अपना घर बार खोने के बाद किस हाल में हैं ये लोग, सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
रात के गहरे सन्नाटे में गोलियों की गनगरज ने नसरीना बानो की गहरी नींद तोड़ दी थी। यह घटना 18 अक्टूबर 2018 की है। रात के 10 बजे 3 चरमपंथी नसरीना के घर में घुस आए थे। सिर्फ 4 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने जिला कुलगाम के लारू गांव को घेरा था, जहां नसरीना रहती हैं। रात के 3 बजे गोली चली। रात के 10 बज रहे थे, 3 चरमपंथी हमारे घर में दाखिल हो गए। हमने उनसे वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। हम सो गए तो 3 बजे गोलियों की आवाज आ गई। हम 3 बजे से 7 बजे तक अपने ही घर में गोलियों के बीच सांस ले रहे थे। किसी तरह हमें 7 बजे बाहर निकाला गया। कुछ ही घंटों के बाद अपने घर को खंडरात में तब्दील होते देखा। एनकाउंटर के कुछ ही दिन बाद मेरे पति का अपहरण हुआ और उनका शव 40 दिन के बाद मिला। हमें नहीं मालूम कि उन्हें किसने मारा। अब मेरे पास बचा ही क्या है। ये थे नसरीना बानो के शब्द। ये घटना घटने के बाद नसरीना के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। जब उनके पापा जिंदा थे तो वो उनकी पढ़ाई का खास ख्याल रखते। बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये थे नसरीना के शब्द। नसरीना अपने तीन मासूम बच्चों के साथ फिलहाल एक पड़ोसी के घर में रह रही हैं और हर चुनौती से लड़ने पर विचार कर रही हैं। नसरीना के घर से करीब 50 किलोमीटर दूर ताल इलाके के आरीपल में विधवा महमूदा बानो के घर का ढांचा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मलबों के ढेर हैं। 5 जनवरी 2019 की बर्फीली सुबह के 6 बज चुके थे। सेना फामीदा के घर में दाखिल हो गई। तलाशी लेने की गर्ज से महमूदा को घर खाली करने के लिए कहा गया। महमूदा जब बाहर आई तो मकान के अंदर गोलियों की आवाजें आने लगी। मैं देख रही थी कि सुरक्षा वालों ने ऊपर जाकर खुद गोली चलाई। मैंने अधिकारियों से कहा कि मेरे साथ चलकर तलाशी ले लो। मैंने बार बार उनसे कहा कि मेरे घर में चरमपंथी नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। मेरे घर को सुरक्षा बलों ने धमाकों से उड़ा दिया। मैं एक विधवा हूं, अब मेरे पास कुछ बाकी बचा नहीं है। 3 बच्चों की माँ हूं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कहा था कि महमूदा के घर में एक चरमपंथी छुपा हुआ था जो फरार हुआ। 1 साल पहले गुलाम मोहम्मद वानी का घर भी जिला कुलगाम के खुड़बनी इलाके में एनकाउंटर के दौरान नष्ट हुआ।
और जहाँ से फायर हुआ पता नहीं कहाँ से फायर हुआ, कहाँ हम डर गए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, पता नहीं ये कहाँ से आए, उन्होंने छलांग लगा दी इधर दीवार पर। हकीकत है ये उन मिलिटेंट हुए तीन थे वो। पता नहीं सुबह गया, सुबह के 5-4 बजे उन्होंने उस पर फायर किए, उसको जला दिया मकान को।
नसरीना और महमूदा की तरह ही वानी भी कहते हैं कि उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि प्रशासन कहती है कि ऐसे पीड़ितों के लिए मुआवजा देने के लिए सरकार की एक पॉलिसी मौजूद है। गोलियों की गनगरज में उजड़े नसरीना और महमूदा के ख्वाबों के आशियां क्या कभी बन भी पाएंगे, उन्हें खुद भी मालूम नहीं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या कुछ खास है। अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिंधु वासिनी, जो अखबार अलट पलट रही हैं। जी सिंधु, बताएं।
शाहिद, आज के लगभग हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर दो लोगों का जिक्र जरूर किया है
जी।
एक तो हैं गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत,
बिल्कुल,
और दूसरे का नाम आपको इन शब्दों से गेस करना पड़ेगा।
अच्छा, क्या है?
सॉरी, नो कमेंट।
नीरव मोदी की बात कर रहे हैं आप।
करेक्ट।
जिनको हाल फिलहाल में देखा गया था लंदन की सड़कों पर नो कमेंट कहते हुए।
नीरव मोदी के बारे में अब खबर यह है कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है
जी।
दैनिक जागरण के मुताबिक भारतीय प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अनुरोध पर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया, और बताया जा रहा है कि ये अरेस्ट वारंट ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर अदालत ने जारी किया है। अखबार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि ये गिरफ्तारी का यह वारंट वैसे तो 13 मार्च को ही जारी हो गया था और अब उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत भारत आ जाएंगे। उनके प्रत्यर्पण में काफ़ी वक्त लग सकता है क्योंकि उनके पास कोर्ट जाने का विकल्प होगा और अदालत उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत भी दे सकती है।
लेकिन सिंधु, इसमें एक बात ये भी है कि हमारे जो लंदन में BBC संवाददाता है, उनको जो होम ऑफिस है यानी गृह मंत्रालय है ब्रिटेन का, उन्होंने इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है।
हाँ, और अभी कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें टेलीग्राफ के एक पत्रकार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे।
जो आपने अभी नो कमेंट कहा, वही बात,
और हर सवाल के जवाब में सॉरी नो कमेंट। इसके अलावा शाहिद, मनोहर पर्रिकर की अंतिम विदाई की खबर और तस्वीरें भी अखबारों में दिख रही हैं। शाम 5:30 बजे कल
उनका अंतिम संस्कार
हुआ गोवा में। एक और खबर कई अखबारों में दिख रही है, वो ये है कि देश के सबसे अमीर शख्स यानी मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया। दरअसल एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीडन की टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन को 459 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया था अनिल अंबानी को, और वो नहीं दे पा रहे थे ये रकम। आखिरकार डेडलाइन से एक दिन पहले मुकेश अंबानी ने ये रकम चुका दी और उन्हें जेल जाने से बचा लिया।
ये कहीं कहीं कुछ कुछ अखबारों में जो रकम है वो कहीं कहीं अलग है। जैसे हिंदुस्तान पे मैं अभी देख रहा हूँ, सिंधु वासिनी, वहाँ लिखा है अनिल अंबानी ने भाई की मदद से चुकाए 550 करोड़।
और दैनिक भास्कर में लिखा है कि मुकेश ने बताया नहीं कि असल में कितनी रकम दी, तो एग्जैक्टली कितना अमाउंट दिया इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं है, और इसके लिए अनिल ने उन्हें शुक्रिया भी कहा है।
अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु वासिनी। बढ़ते हैं आगे। श्रोताओं, बीबीसी हर साल महिलाओं पर केंद्रित कहानियों का खास सीजन 100 विमेन करता है। इसी सीरीज के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि महिलाओं की कहानियां और उनकी आवाजों को लोगों तक पहुंचाएं। इसी के तहत इस बार हम डिजिटल ट्रैश बिन यानी एक तरह का कूड़ेदान लेकर बिहार और राजस्थान में महिलाओं के पास गए। हमने इन महिलाओं से सवाल किया कि वो अपनी जिंदगी की किस एक चीज को कूड़ेदान में फेंकना चाहती हैं। जो जवाब मिले, हम आप तक महिलाओं की वही आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सुनिए राजस्थान के सोड़ा से औरतों की आजादी की आवाज, जिसे पेश कर रहे हैं बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी।
राजस्थान के टोंक जिले का सोड़ा गांव उस वक्त चर्चा में आया था जब वहां पहली महिला सरपंच छवि चुनी गई थी। छवि ने कॉरपोरेट जगत की नौकरी छोड़कर पंचायत का चुनाव लड़ा और पिछले 9 सालों से वो गांव की सरपंच हैं। हमने सोड़ा में औरतों से पूछा किन बेड़ियों को वो तोड़ना चाहती हैं।
आज है ना, पुरुष ऐसे बोलते हैं कि जो है वो औरतें नहीं कर सकती, तुम औरत हो तो औरत की तरह रहा करो, ज्यादा मत बोला करो, तुम क्या कर सकती हो। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है और मैं इसे कूड़ेदान में डालना चाहती हूँ।
ये वो कहीं बाहर जाकर अच्छी पढ़ाई करना चाहती या कुछ करना चाहती है तो वो कर नहीं पाती, क्योंकि घर वालों को भी डर होता है कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं तो उनकी वजह से असुरक्षित हो जाती है।
मैं बोलूंगी जो ऐसे ही बोलूंगी, लिखना नहीं जानती। मैं गरीबी को कचरे में डालना चाहती हूँ।
घूंघट से ना काफी समस्या होती है, खाना नहीं बना पाते, कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, और मैं क्यों अपना चेहरा छुपाऊं। कुछ भी करे तो शर्म से महिलाएं करे, आदमी पूरा बेशरम होकर समाज में घूमे।
छोटी लड़कियों की शादी हमारे समाज में बहुत बड़ी बुराई है। देखो, वो बड़े होकर लड़का लड़की को छोड़ देता है तो वो दोबारा शादी कर सकता है लेकिन लड़की नहीं कर सकती।
एक औरत माँ नहीं बन सकती तो क्या जरूरी है उसी के अंदर कोई कमजोरी है? पुरुष में भी तो कोई कमजोरी हो सकती है।
जैसे मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई तो क्या मेरी कास्ट में मेरे लायक लड़का है? अदर कास्ट में भी मिल सकता है तो क्या मैं उसमें शादी नहीं कर सकती? ये सबसे बड़ी समस्या है कि जाति बंध है।
जो पुनर्विवाह होता है तो एक लड़के को तो ना कमारी लड़की से शादी करने की इजाजत दे दी जाती है, लेकिन एक लड़की को जो उसका रिश्ता टूट जाता है तो उसे ना ये कहते हैं कि तू कमारी लड़की से शादी नहीं कर सकती, और मैं इसे कूड़ेदान में लाना चाहती हूँ।
यानी कि जो हमारे समाज में जो बुराई है शराब की, यानी एक आदमी अपनी शराब के पैसे, मतलब पैसे अर्ज करने के लिए या मतलब अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए वो एक औरत को गलत काम करवाता है।
औरत तो डाल देगी कचरा में, लेकिन आदमी तो डालते ही नहीं है, वो तो कभी मानते ही नहीं है बात को।
सोड़ा गांव में औरतों ने जिन चीजों को फेंका, इस बारे में प्रोफेसर राजीव गुप्ता कहते हैं,
ये ट्रेंड ये बताता है कि जो फेमिनिज्म का दौर महिलाओं की चेतना का हिस्सा बना है, इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं को प्रेरित किया है कि वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के लिए खुलकर के सामने आए। महिलाएं धीरे धीरे निकल करके आ रही हैं और वो पुरुष के द्वारा किए जाने वाले शोषण का, इन सबके शोषण का वह कहीं ना कहीं मुकाबला कर रही है।
बीबीसी की खास सीरीज डिजिटल ट्रैश बिन आप सुन रहे थे, जिसे पेश किया बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी ने। ये आपको कैसी लगी हमें जरूर लिखें। और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह, और आज सबसे पहले बात फुटबॉल की करते हैं। बेंगलुरु एएफसी के कप्तान सुनील छेत्री ने एएफसी गोवा के खिलाफ टीम की इंडियन सुपर लीग आईएसएल की पहली खिताबी जीत को शानदार करार दिया, खासकर तब जब उनकी टीम पिछले स्तर में चेन्नईयन एएफसी के खिलाफ फाइनल में हार गई थी। राहुल के 116वें मिनट में किए गए शानदार हेडर गोल की मदद से बेंगलुरु एएफसी ने रविवार को मुंबई फुटबॉल एरेना में खेले गए फाइनल में एएफसी गोवा को 1-0 से हराकर आईएसएल के 5वें स्तर का खिताब अपने नाम किया है। और अब एक प्रेरित करने वाली बात। गुजरात के डांग जिले में सड़क निर्माण में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदिवासी एथलीट गवित मुरली कुमार ने पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तीसरे दिन पुरुषों के 10,000 मीटर दौड़ को अपने नाम करने के साथ एशियाई चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। कुमार ने इस टूर्नामेंट के पहले दिन पुरुषों के 5,000 मीटर दौड़ को भी अपने नाम किया था। उन्होंने रविवार को 29 मिनट में 21.99 सेकंड के समय के साथ दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। उनका ये समय एशियाई चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन मार्क 29:50 से काफी बेहतर रहा। खेल समाचारों में आज इतना ही।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सिंधु वासिनी से।
बीबीसी समाचार। गोवा विधानसभा के स्पीकर प्रमोद सावंत राज्य के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के देहांत के बाद अब सावंत उनकी विरासत संभालेंगे। उन्होंने मंगलवार देर रात 2:45 के लगभग मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीदरलैंड्स के यूटर्ट शहर में ट्राम में हुई फायरिंग के सिलसिले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के एक सहायता कर्मी ने बीबीसी को बताया है कि मोजाम्बिक के बायरा शहर में साइक्लोन इडाई की वजह से भारी तबाही हुई है। बायरा शहर की आबादी तकरीबन 5 लाख है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि पेरिस में हो रहे हालिया येलो वेस्ट प्रदर्शन गुंडों ने किए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दे अनुमति। नमस्कार।